नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, दिव्यांगजनों का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। दिल्ली सरकार ने कहा, राष्ट्रीय राजधानी में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और पीएनजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शाहजहांआबाद पुनर्विकास निगम की 38वीं बैठक की अध्यक्षता की और राजधानी में दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के अंतर्गत विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि किसी भी देश के विकास में दिव्यांगजनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में पर्पल फेस्ट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये उत्सव दिव्यांगजनों की क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा, दिव्यांगजनों ने साहित्य, खेल, विज्ञान और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। राष्ट्रपति ने दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र और सुगम्य भारत अभियान जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है इस उपकरण लाखों लोगों को स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने का सहायता कर रहे हैं। 2047 तक विकसित भारत के सामूहिक लक्ष्यों को साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इस यात्रा में हमारे दिव्यांगजन भी बराबर की भागीदारी है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और पीएनजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि शहर में किसी भी प्रकार के ईंधन की कोई कमी नहीं है। सरकार ने लोगों से घबराकर अतिरिक्त खरीदारी या जमाखोरी न करने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। सरकार ने यह भी कहा है कि ईंधन की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक रिपोर्ट।
दिल्ली सरकार ने बताया है कि राजधानी में ईंधन की उपलब्धता पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने भी पुष्टि की है कि घरेलू पीएनजी की आपूर्ति स्थिर है। प्राकृतिक गैस के आवंटन में घरेलू पीएनजी और परिवहन क्षेत्र के सीएनजी उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही तेल विपणन कंपनियों ने भी आश्वस्त किया है कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आपूर्ति श्रृंखला बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से कार्य कर रही है। सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि एलपीजी रिफिल बुकिंग के लिए न्यूनतम अंतराल को 21 दिनों से बढ़ाकर अब 25 दिन कर दिया गया है। वहीं खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के फील्ड अधिकारियों को तैनात किया है, जिससे रिफिल बुकिंग की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। साथ ही प्रवर्तन टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं, ताकि ईंधन की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोका जा सके। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
भारत ने पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति के मद्देनजर ईरान से ऊर्जा और वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति के महत्व पर जोर दिया है। इस क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्किन से बात की। उन्होंने ईरान समेत इस क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण को भारत की प्राथमिकता बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सभी मुद्दों को संवाद और कूटनीति से हल करने के अपने रुख पर कायम है। एक रिपोर्ट।
श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष पूरी तरह से काम कर रहा है और अब तक 900 फोन कॉल और 200 ईमेल प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में 170 भारतीय नागरिक ईरान की सीमा से आर्मेनिया पहुंचे हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पश्चिम में भारतीय ध्वज वाले 24 और हॉर्मुज के पूर्व में भारतीय ध्वज वाले 3 जहाज हैं।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम तरफ जो पर्शियन गल्फ है उसमें 24 इंडियन फ्लैग वेसल्स हैं, उसमें 677 भारतीय नाविक हैं। जो गल्फ ऑफ ओमान है उसमें 4 वेसल थे कल, एक उसमें से मूव किया है जग प्रकाश। इसके अलावा टोटल गल्फ रीजन में करीब 23,000 इंडियन नाविक हैं। डीजी शिपिंग इन सभी से निरंतर तरीके से संपर्क बनाए हुए है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश पेट्रोल और डीजल के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। उन्होंने कहा कि सभी तेल शोधन कारखाने 100% क्षमता से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू पीएनजी और वाहनों के लिए सीएनजी की निर्बाध तथा 100% आपूर्ति की जाएगी।
नेचुरल गैस ऑर्डर 9 मार्च 2026 को जो इशू हुआ था उसमें कई सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज किया गया है और उसी ऑर्डर के क्रम में पीएनजी डोमेस्टिक सप्लाई और सीएनजी को बिना किसी कट के पीएनजी सप्लाई इंश्योर की जा रही है। भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि जिनको अभी एलपीजी सप्लाई की वजह से जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उन सभी उपभोक्ताओं से हमारी अपील है कि वो भी लोकल एरिया के सीजीडी नेटवर्क से बात करें और पीएनजी कनेक्शन लें।
एलपीजी के बारे में संयुक्त सचिव ने कहा कि 25,000 वितरकों में से किसी के पास स्टॉक खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी और जमाखोरी पर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एलपीजी का घरेलू उत्पादन आज 30% तक बढ़ गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी उपस्थित थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने बताया कि समझौते के तहत दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए फोटो कैटेलिटिक स्मॉग ईटिंग सरफेस तकनीक पर व्यापक अध्ययन किया जाएगा, जिसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसे सुरक्षित फोटो कैटलिस्ट का उपयोग करके विशेष रूप से नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसों को कम करने की संभावनाओं का परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगले 6 महीनों में इस परियोजना पर काम होगा और उसकी प्रगति की नियमित समीक्षा भी की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम की 38वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। इसमें पुरानी दिल्ली के समग्र विकास, विरासत संरक्षण आदि से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि पुरानी दिल्ली की 28 सड़कों पर लगभग 160 करोड़ रुपए की लागत से विकास का काम चल रहा है।
हम वायरिंग को भी अंडरग्राउंड करने का काम करेंगे, हम सड़कें बनाने का, उसका ब्यूटिफिकेशन का, टॉयलेट मेंटेनेंस का, सफाई अभियान का, और यहां तक कि टाउन हॉल को भी एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट की तरीके से वहां पे उसको डेवलप किया जाएगा और इसको उसी सुंदरता के साथ, उसी विरासत के साथ में इसका विकास किया जाएगा।
इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित थे। बैठक के बाद श्री सूद ने कहा कि पुरानी दिल्ली के विकास और संरक्षण के प्रति पिछली सरकार ने गंभीर प्रयास नहीं दिखाया।
मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये बोर्ड दिल्ली की सांस्कृतिक धरोहर को, दिल्ली की पुरानी आबादी क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए और वहाँ के वातावरण भौगोलिक स्थिति के आधार पर डेवलप करने के लिए हमारा प्रयास है। आज से चर्चाएं शुरू हुई हैं, बहुत जल्द सभी एजेंसीज को एक साथ लेकर व्यापक तरीके से काम करने का प्रयास किया जाएगा।
दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि मुलाकात के दौरान सुरक्षा, कानून व्यवस्था, साइबर अपराध और उभरती असामान्य समस्याओं से संबंधित चुनौतियों की समीक्षा की गई और उनके समाधान के लिए नए और प्रभावी उपायों पर चर्चा भी हुई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बड़ूसराय पुल, नजफगढ़ नाला, पंखा रोड नाला पर डी सिल्टिंग के लिए नई एम्फीबियस खुदाई मशीन का जलावतरण किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने बताया कि यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए दिल्ली के नालों की सफाई का काम तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक से सुसज्जित मशीनें नालों और जलाशयों में जमा सिल्ट, कचरे और जल कुंभियों को तेजी से हटाने में सक्षम है, जिससे सफाई का काम पहले से ज्यादा तेज होगा और अधिक प्रभावी भी होगा। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आज सर्विकल कैंसर जागरूकता विषय पर दिल्ली सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान सर्विकल कैंसर के कारण, लक्षण, बचाव के उपाय और समय पर जांच तथा टीकाकरण के महत्व पर चर्चा की गई। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि जागरूकता अभियान के जरिए अधिक से अधिक महिलाओं तक इस विषय की जानकारी कैसे पहुंचाई जाए। दिल्ली सरकार में मंत्री और राजौरी गार्डन से विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज अपनी विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय निवासियों से मिलकर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि मौके पर मिली शिकायतों को लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि जनता के काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पूर्व उपराष्ट्रपति और वरिष्ठ राजनेता एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस मुलाकात के दौरान दिल्ली के सर्वांगीण विकास और जनकल्याण के विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि श्री एम वेंकैया नायडू के लंबे सार्वजनिक जीवन के अनुभवों और बहुमूल्य मार्गदर्शन से लोगों को हमेशा एक नई ऊर्जा मिलती है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज जनकपुरी के A3 ब्लॉक में 3 करोड़ से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने बताया कि इस पहल के तहत सड़कों का नवीनीकरण, बैकलेन का पुनर्निर्माण, रोड बम्प्स का सुधार और पार्कों के विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों के माध्यम से क्षेत्र में बेहतर बुनियादी ढांचा सुनिश्चित होगा और स्थानीय निवासियों को अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण भी उपलब्ध हो जाएगा। श्री सूद ने आज जनकपुरी कार्यालय में एक जन सुनवाई कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों से बातचीत में उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र समाधान के निर्देश भी दिए। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने आज बताया कि राजधानी के विभिन्न स्थानों पर कल से दूसरे चरण का प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनी दिल्ली आवास अधिकार योजना PM उदय सिंगल विंडो कैंप आयोजित किया जाएगा। इस 2 दिवसीय कैंप के जरिए अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को पंजीकरण, लंबित मामलों के समाधान, दस्तावेज तैयार करने तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली सर्वेक्षण से संबंधित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। नई दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली खेल महाकुंभ प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। कुश्ती प्रतियोगिता में अलग अलग भार वर्गों में खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया। 48 किलोग्राम वर्ग में ऋषभ ने पहला जबकि चेतन ने दूसरा स्थान हासिल किया। 74 किलोग्राम वर्ग में विशाल दूसरे और राहुल तथा पिंटू तीसरे स्थान पर रहे। पीतमपुरा में आयोजित कॉलेज श्रेणी के बास्केटबॉल सेमीफाइनल में गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज ने हिंदू कॉलेज को हरा दिया है। ये प्रतियोगिता दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की खेल शाखा ने आयोजित की। दिल्ली में 8 अप्रैल को विश्व बंजारा दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली सरकार में कला, संस्कृति और भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने इस कार्यक्रम को लेकर बंजारा विमुक्त घुमंतु कल्याण संघ के साथ एक बैठक भी की। राजधानी में आज का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। विभाग के अनुसार कल आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान लगाया गया है। और अंत में सुन लीजिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, दिव्यांग जनों का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। दिल्ली सरकार ने कहा, राष्ट्रीय राजधानी में LPG, पेट्रोल, डीजल और PNG की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम की 38वीं बैठक की अध्यक्षता की और राजधानी में दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के अंतर्गत आज विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।